मसीह यीशु के मधुर नाम में आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्रोताओं, हम विश्वास करते हैं कि आपको हमारे इस अध्ययन से बहुत लाभ मिल रहा है और आपके आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति हुई है। तो श्रोताओं, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पत्री का मुख्य उद्देश्य है उद्धार के अनुसार व्यवहारिक जीवन व्यतीत करना। श्रोताओं, इस पत्री में पौलुस ने मसीह पर विश्वास और मसीह के प्रति समर्पण पर अत्यधिक बल दिया है। तो लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं आज का ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। किंतु इससे पूर्व कि आप अपना ध्यान बाइबल अध्ययन की ओर लगाएं, मन की तैयारी के लिए प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन को सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आपको स्मरण दिला दूं कि पिछले दिनों हम पहले और दूसरे इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जो पुराने नियम की पुस्तक थी। आज हम नए नियम की पुस्तक उसके पहला कुरिन्थियों से अध्ययन आरम्भ करेंगे। और मैं आपको यह बता दूं कि यह प्रेरित पौलुस का पत्र है जो उसने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा था। पत्र लिखते समय वह इफिसुस नगर में था, जो लगभग सन 55 से 57 के मध्य का समय है, और यह माना जाता है कि लगभग सन 57 अधिक उचित समय है। मेरे मित्रों, पौलुस के युग का कुरिन्थ नगर रोमी साम्राज्य के पाप का केंद्र था, जिसे ठाट बाट का मेला नाम दिया गया था। इस नगर की भौगोलिक स्थिति एथेंस नगर से 60 किलोमीटर पश्चिम की ओर एक संकीर्ण थल डमरू मध्य पर थी, जो दूसरे मुख्य भूभाग को जोड़ता था। यह नगर रोमी साम्राज्य का एक प्रमुख व्यापार का केंद्र था, जहां तीन बंदरगाह थे, जिनमें दो मुख्य बंदरगाह थे, लेचियम जो 2.25 किलोमीटर पश्चिम में और कैंक्रिया में थे, पूर्व में लगभग 13 किलोमीटर में था। पौलुस के युग के बाद इस थल डमरू के मध्य एक नहर बना दी गई थी और अब कुरिन्थ का महत्व पहले जैसे नहीं रहा है। मेरे प्रियो, कुरिन्थ नगर के तो खंडहरों का भी इतिहास से विलोप हो गया है। आज वहां मछियारों का गांव है। 1928 में वहां भूकंप आने के कारण प्राचीन कुरिन्थ नगर प्रकट हुआ था और अब उस नगर का अधिकांश भाग पुरातत्व विभाग द्वारा खोदा जा चुका है। मेरे प्रियो, इतिहास का वह युग जब यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र था, कुरिन्थ नगर आखिया संघ का प्रधान था। 196 ईस्वी पूर्व में रोम ने इसे स्वतंत्र नगर घोषित कर दिया था और तब 146 ईस्वी पूर्व में कुरिन्थ नगर ने विद्रोह किया और परिणाम स्वरूप ममियूस एक रोमी सेनापति द्वारा पूर्ण रूपेण नष्ट कर दिया गया। उसकी कलाकृतियों का संग्रह रोम ले जाया गया और एक शताब्दी तक यह नगर उजाड़ पड़ा रहा। 100 वर्ष पश्चात 46 ईस्वी पूर्व में केसर जूलियस ने इस नगर को उसके पूर्व के वैभव और महत्व में पुनः स्थापित किया। मेरे मित्रों, पौलुस के युग में इस नगर में लगभग 4 लाख नागरिक वास करते थे। यह तो हम देख ही चुके हैं कि यह नगर थल डमरू पर स्थित एक वैश्विक व्यापार केंद्र था, जिसका कारण वहां उपस्थित 2 बड़े बंदरगाह थे। वहां के नागरिक यूनानी, यहूदी और इतालवी थे। एक प्रकार का मिला जुला समुदाय था। नाविक, व्यापारी और उनके जीविका उपार्जन करने वाले शरणार्थी सब वहां आते थे। वह एक शाश्वत ठाट बाट का मेला था। पूर्व और पश्चिम की सब बुराइयां वहां पर पाई जाती थी और मानवीय पतन के निमित्त प्रसार आलिंगन करती थी। मेरे मित्रों, धर्म को घृणित रूप से देखा जाता था, अर्थात धर्म को घृणित रूप दे दिया गया था। वहां यूनानी देवी यूनस, जो प्रेम की देवी थी, उसके लिए वहां पर एक वैभवशाली मंदिर बनाया गया था और इस मंदिर में 1000 पुजारिने रहती थी जो घृणित पूजा करवाती थी। वे वास्तव में वेश्याएं थी। वहां धर्म ही योनाचार था। मेरे विचार में आज की पीढ़ी के लिए वे योनाचार में गुरु माने जा सकते हैं, तथापि आज की पीढ़ी इस विषय में उनसे कम नहीं है। हम आज इससे अभिभूत हैं। मेरे मित्रों, उनका धर्म ही भ्रष्ट नहीं था। यूनानी दर्शन शास्त्र का भी पतन हो रहा था और यह नगर योनाचार और भोग विलास में मग्न था। वहां खेलकूद का भी आयोजन किया जाता था। वहां के नागरिकों में अनंत वाद विवाद का अभ्यास भी चलता था। इस पृष्ठभूमि में पौलुस मसीह का प्रचार करने आया था। उसने कहा, मैंने ठान लिया है कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। जी हाँ, वहां के नागरिक भोग विलास, लंपटता और मद्यपान में व्यस्त थे। और सच तो यह है कि उन्होंने रोमी साम्राज्य में एक नया शब्द बनाया था, कुरंथ स्वभाव। इसका अर्थ था पाप की अतः गहराई में उतरना। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास करें, इस भ्रष्ट पृष्ठभूमि में पौलुस ने सुसमाचार सुनाया। उसने कुरिंथ नगर में कलीसिया की स्थापना की और आगे चलकर उन्हें 2 पत्र भी लिखे। पौलुस अपनी दूसरी प्रचार यात्रा में वहां आया था और उसकी तीसरी प्रचार यात्रा का वह अंतिम चरण था। हम प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 1 से 18 पद में वह कुरिंथ नगर में अपने 18 महीनों के कार्य का ब्यौरा हमें देता है। कुरिंथ नगर ही है जहां पर अक्विला और प्रिस्किला से उसकी मुलाकात हुई थी। यह दंपति सम्राट क्लॉडियस के आदेशानुसार रोम से कूच करके वहां आए थे। सुटोनियस के अनुसार यह राजाज्ञा इसलिए निकाली गई थी कि यहूदी मसीही विश्वासियों को सता रहे थे। मेरे मित्रों, जब पौलुस कुरिंथ नगर में आया था, तब उसने सर्वप्रथम यहूदियों के आराधनालय में प्रचार किया था और परिणाम स्वरूप सदा की नाई वहां उपद्रव खड़ा हो गया था। यह तो हर स्थान में पौलुस के साथ होता था। वहां जहां भी प्रचार करता था, वहां उपद्रव, विद्रोह और नव जागृति उत्पन्न होती थी। अतः कुरिंथ नगर में ऐसा होना असामान्य घटना नहीं थी। तीसरी प्रचार यात्रा में पौलुस ने इफिसुस में लंबा समय बिताया था। इफिसुस ही वह स्थान था जहां पौलुस ने असाधारण प्रचारक कार्य किया। संभवतः वह स्थान पौलुस के अन्य प्रचार क्षेत्रों की तुलना में सर्वाधिक सुसमाचार व्याप्त क्षेत्र था। संभवतः इसी कारण कुरिंथ के विश्वासी कुछ परेशान थे। वे अभी विश्वास के संबंध में शिशु अवस्था में थे, अर्थात वे अधिक नहीं जानते थे। वे पौलुस से वहां आने का आग्रह कर रहे थे और यही कारण है कि पौलुस ने वहां के कलीसिया से भ्रमित अभ्यासों को सुधारने हेतु पत्र लिखा और पत्र पढ़कर उनके मन में उत्पन्न राजनीति, धर्म, आंतरिक समस्याओं और अन्य जातीय आचार विचार और नैतिकता के प्रश्न उन्होंने पौलुस से पूछे। पौलुस ने उन्हें पत्र में इन प्रश्नों के उत्तर दिए और उनके विषय में प्राप्त समाचारों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाई। हमारे पास उन्हें लिखा पौलुस का प्रथम पत्र नहीं है, जिस पत्र को हम पहला कुरिन्थियों कहते हैं। जी हाँ, वह वास्तव में उसे दिए गए कुरिन्थ कलीसिया के समाचार की प्रतिक्रिया है। आज हम इसी पत्र के अध्ययन का आरंभ करने जा रहे हैं और इसके बाद पौलुस ने उन्हें और एक पत्र लिखा जिसे हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री कहते हैं। मेरे मित्रों, इस पत्र का मुख्य विषय है मसीह की श्रेष्ठता, यीशु की प्रभुता। हमें इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है क्योंकि यही समस्याओं का समाधान है। आप इस पत्र में देखेंगे कि प्रभु यीशु ही नैतिक, सामाजिक और कलीसियाई अव्यवस्था का समाधान है। मेरे मित्रों, इस पत्र में हम पुनरुत्थान की सही शिक्षा को देखेंगे जिसके कारण यह पत्र सर्वाधिक महत्व का होता है। इसका मुख्य विभाजन तीन भागों में है। पहला है अभिवादन और धन्यवाद, जिसे हम पहले अध्याय उसके 1-9 पद में देखते हैं। दूसरा विभाजन है सांसारिकता, 1 अध्याय उसके 10-11 अध्याय के 34 पद, जिसमें कुरिन्थ की कलीसिया की स्थिति है। और तीसरा विभाजन है आत्मिकता, 12-16 अध्याय, आत्मिक वरदान। मेरे मित्रों, आत्मिकता सांसारिकता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे विचार में हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि 2000 वर्ष पूर्व कुरिन्थ की कलीसिया समस्याओं से घिरी हुई थी। उन्होंने मुख्य उद्देश्य तथा मसीह यीशु में अपने अन्य मार्ग को अपनाया हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इन समस्याओं ने घेर लिया था। ठीक इसी प्रकार हमारी आज की कलीसिया समस्याओं से घिरी हुई है। यह बड़े अचंभे की बात है कि आज की कलीसिया 2000 वर्ष पुरानी कुरिन्थ की कलीसिया के सदृश समस्याओं से घिरी हुई है। मेरे विचार में आज कलीसिया की मुख्य समस्या क्रूसित मसीह को केंद्र में न रखना ही है। हमने प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के महत्व को अनदेखा कर दिया है। उस समय की यही समस्या थी और आज भी यही समस्या है। इस पत्री का अध्ययन हमारे जीवन में प्रासंगिक एवं हमारे जीवन से संबंधित है। तो मित्रों, आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय 1 को देखेंगे, जिसका विषय है क्रूसित मसीह को केंद्र में रखना और विभाजन का सुधार। सर्वप्रथम हम देखेंगे अभिवादन और धन्यवाद। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और भाई सोथिसनेस की ओर से। मेरे प्रियो, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, इससे स्पष्ट होता है कि पौलुस किस प्रकार का प्रेरित था। वह बुलाया गया प्रेरित था, परमेश्वर ने उसे बुलाया था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे दमिश्क के मार्ग में पकड़ लिया था। इसके पश्चात परमेश्वर ने आत्मा ने उसे अरब के रेगिस्तान में प्रशिक्षण दिया। वह एक बुलाया हुआ प्रेरित था। वह मसीह यीशु का प्रेरित था जो परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित बनाया गया। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। आज यह कहना परमेश्वर की इच्छा से मैं जहां हूं वहां हूं और जो कर रहा हूं वह कर रहा हूं, क्या यही आपकी स्थिति है? क्या आप यह कह सकते हैं? तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप एक अत्यधिक आनंदित एवं हर्षित विश्वासी हैं। आप आनंदित एवं हर्षित नहीं हैं। जीवन में एक दिशानुकूल व्यक्ति भी नहीं है। प्रियो, आपको निराशाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। निस्संदेह यदा कदा आपके सामने निराशाएं आएंगी, परंतु आपके भीतर गहराई में संतोष वास करता है। पौलुस के मन में संतोष अर्थात शांति व्याप्त था जब उसने कहा, परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित भाई सोथिसनेस की ओर से। मेरे मित्रों, यहां पर स्पष्ट है कि सोथिसनेस कुरिन्थ की कलीसिया का समाचार लाया था। अब वह इस पत्र के साथ लौटेगा। पौलुस के अभिवादन में वह भी सहभागी है। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में हैं, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि वह कहता है कि परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है। उस कलीसिया को वह परमेश्वर की कलीसिया कहता है क्योंकि उसका रचयिता परमेश्वर ही है। यह पत्र मसीह यीशु में पवित्र किए गए विश्वासियों के नाम लिखा गया था। कलीसिया भौतिक रूप से कुरिन्थ नगर में थी, परंतु वह वास्तव में मसीह यीशु में थी। मेरे प्रियो, कलीसिया की स्थिति नहीं, प्रभु यीशु मसीह की महत्वपूर्ण है। एक विश्वासी के लिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मसीह में अवस्थित रहना। आप चाहे कुरिंथ नगर में हो या दिल्ली में, इफिसुस नगर में हो या बॉम्बे में, यह आनुषांगिक है। महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है, क्या आप मसीह यीशु में हैं? पौलुस उन विश्वासियों को मसीह यीशु में पवित्र किए गया कहता है। पवित्र शब्द अनेक भावार्थों में उपयोग किया गया है, जैसा हम रोमियो के पत्र के अध्ययन में देख चुके हैं। यहाँ पवित्र शब्द स्थिति संबंधित है, अर्थात मसीह यीशु में हमारी जो स्थिति है उसके संबंध में। मित्रों, जब पवित्र शब्द पिता परमेश्वर या पुत्र परमेश्वर से जुड़ा हो, तब वह सामान्यतः स्थिति संबंधित होता है, और जब पवित्र शब्द पवित्र आत्मा से संबंधित हो, तब वह व्यवहारिक होता है। पद 30 में हम सीखेंगे कि मसीह हम में पवित्र किया गया है। जी हाँ, बुद्धि, धार्मिकता और उद्धार के साथ वह हमारी पवित्रता है। मेरे मित्रों, देखिए, न तो आप और न ही मैं स्वर्ग जा सकते हैं जब तक कि हम सिद्ध ना हो जाएं। मैं सिद्ध तो क्या, सिद्धता के निकट भी नहीं हूं। सच तो यह है कि यदि आप मुझे उतना अधिक जानते जितना मैं स्वयं को जानता हूं, तो आप मेरे प्रचार को कभी नहीं सुनते। रुकिए, अभी अपना रेडियो आप बंद ना करना। जी हाँ, यदि मैं आपको उतना अधिक जानता जितना आप स्वयं को जानते हैं, तो मैं आपको वचन नहीं सुनाता। अतः हमारा संपर्क न टूटे, कृपया आप बुरा ना माने। पवित्रता मसीह में हमारी स्थिति है। यदि आप उसमें विश्वास करते हैं, तो वह आपके लिए आपकी पवित्रता है। आप आज भी उसी उद्धार में हैं, जिसमें 10 लाख वर्ष बाद आप होंगे, क्योंकि मसीह में आपका उद्धार हो गया है। आप इसमें कुछ नहीं जोड़ सकते हैं। जी हाँ, अब व्यवहारिक पवित्रता भी है, जो अलग अलग है। कुरिन्थ के विश्वासी पवित्र जनों के से प्रतीत नहीं होते हैं। उनके जीवन से पवित्र आत्मा का कार्य प्रकट नहीं था, परंतु वे मसीह यीशु में पवित्रता की स्थिति में थे। वे पवित्र होने के लिए बुलाए गए थे। जिस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें प्रेरित होने के लिए बुलाया था, उसी प्रकार परमेश्वर ने उन्हें पवित्र जन होने के लिए भी बुलाया था। हम भी पवित्र जन कहलाते हैं। हम अपने कार्यों से पवित्र जन नहीं हो जाते। मेरे मित्रों, हम मसीह में अपनी स्थिति के कारण पवित्र होते हैं। पवित्र जन होने का वास्तविक अर्थ है परमेश्वर के लिए अलग किए गए लोग। प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर के लिए अलग होना है, जिस प्रकार की मिलाप वाले तंबू के पश्चात मंदिर के पात्र पवित्र कहलाते थे। पवित्र, जी हाँ, क्योंकि वे परमेश्वर के उपयोग के लिए पृथक किए गए थे या अलग किए गए थे। परमेश्वर की संतान किस आधार पर पवित्र जन या पवित्र है? परमेश्वर के उपयोग के आधार पर। यह हमारी स्थिति है, और मैं फिर कहता हूं कि अपने कर्मों के आधार पर कोई भी व्यक्ति पवित्र जन नहीं होता। जी हाँ, संपूर्ण विश्व पवित्र जन में विभाजित नहीं है। यदि आप मसीह में नहीं हैं, तो नहीं की श्रेणी में है, और यदि आप मसीह में हैं, तो आप पवित्र जन हैं। मेरे प्रियो, कुरिन्थ के विश्वासी सामूहिक रूप से पवित्र जन कहलाते थे। उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। संभवतः यदि हम यह कहें कि हर एक स्थान में उनके और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारने वालों के सब नाम, तो अधिक उचित होगा। इससे प्रकट होता है कि इस पत्री की शिक्षा विश्वव्यापी कलीसिया के नाम है, जो मसीह का नाम लेने वालों की कलीसिया है, चाहे वह कुरिन्थ नगर में हो या अन्य किसी भी स्थान में। अब पौलुस अपना विशेष आशीर्वाद काम में लेता है, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरे मित्रों, अनुग्रह और शांति सदा इसी क्रम में रहते हैं। अनुग्रह यूनानी अभिवादन का शब्द है, शांति शालोम धार्मिक क्षेत्र में यहूदियों का अभिवादन शब्द है। पौलुस ने दोनों शब्दों को संयोजित करके सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। आपका और मेरा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, जो व्यवहारिक प्रेम है। परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा उद्धार पाने पर हम अपने मन में परमेश्वर की शांति का अनुभव पाते हैं। क्या आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? क्या आपके पाप मसीह पर डाले गए हैं? यदि डाले गए हैं तो आपके मन में शांति होगी, क्योंकि उसने आपके सब पापों को अपने ऊपर उठा लिया। देखिए रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेरे मित्रों, अनुग्रह और शांति 2 अति उत्तम शब्द हैं। आइए हम पढ़ें 1 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसका 4 पद, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का सदा धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। मेरे प्रियो, मसीह यीशु में, यह मसीह यीशु में ही है कि हमें सब आशीषें प्राप्त होती हैं। इफिसियों के पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में पौलुस लिखता है, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। आशीषों का स्थान वही है। मेरे मित्रों, मसीह यीशु, मसीह उसका पद है जबकि यीशु उसका सांसारिक नाम है। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त जन। यह प्रतीक्षा किए गए उद्धारकर्ता का जातिवाचक शब्द है। क्या मसीह यीशु या यीशु मसीह की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है? पौलुस कहता है कि उसने मसीही को देहिक रूप में नहीं जाना, अर्थात वह इस पृथ्वी पर विचरण करते यीशु को नहीं जानता था। उसने यीशु को अवश्य देखा होगा, वह क्रूसीकरण के समय भी वहां उपस्थित रहा होगा, परंतु उसका साक्षात्कार पुनरुत्थित मसीह यीशु से हुआ था और पौलुस के लिए वह सदैव महिमा का प्रभु था। पौलुस के अधिकांश पत्रों में यीशु मसीह की अपेक्षा मसीह यीशु पढ़ा जाना चाहिए। हम 1 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में आगे पढ़ते हैं कि उसमें होकर हर बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। मेरे प्रियो, यही बात पौलुस कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 16 पद में लिखता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ, क्योंकि मैं अपने मन में गा नहीं सकता, इसलिए मैं मुंह से भी नहीं कह सकता, अर्थात मैं परमेश्वर के वचन की चर्चा नहीं कर सकता। कुछ कलिसियाओं में आराधना के समय भजन गाए जाते हैं। मेरे विचार में संपूर्ण बाइबल को संगीत से संवारा जा सकता है, परंतु मैं गाने में सक्षम नहीं हूं। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारे मन में मसीह का वचन हो। इसका अभिप्राय बाइबल के पदों को कंठस्थ करने से नहीं है, इसका अर्थ है वचन का पालन करना। जी हाँ, यदि मसीह आप में अंतर्वासी है तो आप उसके आज्ञा पालक हैं और आप उस पर मनन करते हैं। वह आपके मन मस्तिष्क पर प्रभुता करता है। कुछ निकृष्ट धूर्त जो मैंने देखे हैं, उन्हें सैकड़ों बाइबल पद कंठस्थ हैं। अब इसका अर्थ यह नहीं कि आप बाइबल पदों को कंठस्थ न करें। कहने का अर्थ यह है कि बाइबल कंठस्थ करने से वे आपके मन में अवस्थित नहीं हो जाते, उनका पालन करने से ही। मेरे मित्रों, वे आपके मन में अवस्थित हो जाते हैं, अर्थात आप मसीह के विचारों में लीन रहते हैं और उसमें, अर्थात उसके द्वारा नहीं, पोषित होते हैं। जब वह आपके जीवन का प्रभु हो जाता है तब आपकी समस्याओं का समाधान होता है। इस पत्र में पौलुस इसी विषय पर चर्चा करेगा। हम 1 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 और 7 पद में पढ़ते हैं कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। मेरे मित्रों, यहां वह उस कलीसिया की एक समस्या को उजागर करता है। वे सांसारिक जन थे, वे केवल एक ही वरदान में व्यस्त थे। पौलुस आरंभ ही में कहता है कि उनमें या उन्हें किसी वरदान की घटी नहीं थी। वरदान अनेक हैं। पौलुस चाहता था कि कलीसिया में सब वरदान प्रकट हों। जी हाँ, यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहो, अर्थात वे मसीह में व्यस्त रहें। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। मेरे प्रियो, वह कहता है निर्दोष अर्थात त्रुटि रहित। आपकी गलती निकालने के लिए मनुष्य सदैव तत्पर रहेगा, परंतु आप दोषी न पाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। प्रभु यीशु मसीह के दिन से वर्तमान समय का अभिप्राय नहीं है, यह वह दिन है जब वह आकर अपनी कलीसिया को इस संसार से उठा ले जाएगा। जी हाँ, पौलुस इस पत्र में इसकी भी चर्चा करेगा। अब हम पौलुस के इस पत्र की प्रस्तावना के अंतिम पद पर आते हैं, अभिवादन और धन्यवाद। इस पद को यह सोचकर अनदेखा करना बड़ा आसान होगा कि आपने किसी महत्वपूर्ण बात को नहीं छोड़ा है, परंतु मेरे विचार में पद 9 मुख्य विचार है। यह पद बल देता है कि उनकी समस्याओं का कलीसियाई और व्यक्तिगत समाधान मसीह यीशु ही है। मेरे मित्रों, कुरिन्थ की कलीसिया और आज की कलीसिया में समस्याओं की समानता देखना एक आश्चर्य की बात है। समस्याओं का समाधान आज भी वही है जो उस युग में था। आज बहुत सी कलीसियाएं इसी प्रकार की बहुत सारी समस्याओं से उलझ रही हैं। परंतु आज मुझे और आपको अपनी कलीसियाओं को निहारने और नजदीकी से जांचने की आवश्यकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम कलीसिया के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन को देखें, ताकि हम पौलुस की पत्री अर्थात कुरिन्थ को लिखी गई पत्री के द्वारा अपनी कलीसियाओं में हम भी आशीषों को ला सकें। मेरे प्रिय मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में जाना है और आशीषों को प्राप्त किया है। अगले अध्ययन में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें और प्रभु की निकटता में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
उसकी महिमा उसकी भक्ति जीवन की है भलाई, उसकी महिमा उसकी भक्ति जीवन की है भलाई। शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई, शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, ओ यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। हो गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर।